ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंध अध्याय 10 श्लोक संख्या 21 अध्याय शीर्षक भक्त शिरोमणि प्रह्लाद। भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्ता त्वाम् अनुव्रताः। भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां निर्प्रतिरूपधृक्। जो तुम्हारे आदर्श का अनुसरण करेंगे वे स्वभावतः मेरे शुद्ध भक्त भक्त हो जाएंगे। तुम मेरे भक्त का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हो और अन्य लोगों को तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। कृपया इस अनुवाद को दोहराइए। जो तुम्हारे आदर्श का अनुसरण करेंगे वे स्वभावतः मेरे शुद्ध भक्त हो जाएंगे। तुम मेरे भक्त का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हो और अन्य लोगों को तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। भावार्थ। इस प्रसंग में श्रील माध्वाचार्य स्कंद पुराण से एक उदाहरण देते हैं। रीते तु तात्विकान देवान नारदादीन तथैव च प्रह्लादोत्तम को नु विष्णु भक्तौ जगत्रये। पूर्ण पुरुषतम भगवान के अनेकानेक भक्त हैं जिनकी गणना श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार कराई गई है। स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रह्लादो जनक भीष्म बलि वयासकी वयम। बारह अधिकारी भक्तों में जिनमें ब्रह्मा नारद शिव कपिल मनु इत्यादि सम्मिलित हैं प्रह्लाद महाराज सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। हरे कृष्णा। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि आज मंगला आरती में रमाकांत प्रभु जी का भागवत क्लास का अनाउंसमेंट हुआ था लेकिन मैं कैसे आ गया। एक्चुअली उनका पैर में चोट लग गया तो चोट लगने के कारण उन्होंने बैठने के लिए दिक्कत होता है तो उन्होंने मुझे बताया कि आप थोड़ा दे दीजिए क्लास, तो इसलिए उनका नाम लिखा गया और अनाउंस भी हुआ। ठीक है। हरे कृष्णा। तो आप लोग भगवान नृसिंहदेव एवं प्रह्लाद महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। तो कैसे प्रह्लाद महाराज कैसे भगवान नृसिंहदेव से जो वर प्रार्थना कर रहे हैं और उनमें से क्या क्या उनको करना चाहिए। प्रह्लाद भगवान नृसिंह ने प्रह्लाद जी को बहुत सारे वरों का याचना करते हैं लेकिन शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने सारे भौतिक वरों को निराकरण अनादर कर देते हैं और अपने मन से ही वो भक्तों का कल्याण जीव का कल्याण के लिए जो जो आवश्यक है तो उन्हीं को ही वो प्रार्थना करते हैं याचना करते हैं। और प्रह्लाद श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि प्रह्लाद जो द्वादश महाजन परिगणन किए गए तो उनमें से एक है। जैसे प्रभुपाद ने कहे कि स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रह्लाद जनक भीष्म बलि वयासकी वयम। ये प्रसंग ये कहां पे आया था? ये अजामिल चरित्र का प्रसंग है। जब यमदूतों ने विष्णु दूत को देखे और विष्णु दूत ने उनको वापस भेज दिया, तुम्हारे ये अजामिल को लेने के लिए तुम्हारे अधिकार नहीं है, क्योंकि ये भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, तो इसलिए हमारे प्रभु का आदेश है कि हम ही इनको उनके पास ले जाएंगे। तब उनका यमदूत का मन में ऐसे ही शंका हुई, क्या अब तक तो हम जानते थे कि हमारे प्रभु यमराज ही सर्वश्रेष्ठ है, उनसे और बढ़कर कोई है नहीं संसार में, तो आप कह रहे हैं कि हमारे प्रभु जिनका आदेश से आप आए हुए हैं, तो क्या आप जो कह रहे हैं आपका प्रभु, ये प्रभु क्या हमारे प्रभु से बड़े हैं क्या? तो उन्होंने बताते हैं कि हाँ, अरे वो तुम्हारे प्रभु तो ये एक विभाग का अधिकारी है, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का ही अधिकारी है, जिनका आदेश मात्र से ही समस्त ब्रह्मांड परिचालित होते हैं। तो इसलिए आप अभी यहां से वापस जाइए। तो उन्होंने वापस गए, जाकर अपना प्रभु जो यमराज उनसे पूछे, तो सारे बात जो पूछे तो ने यमराज ने बताए थे कि बलि बयासकी बयम, सो अपने को इंगित करके कहते हैं कि ये स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रह्लाद जनक भीष्म बलि और बयम, हम भी मैं भी। तो उन्होंने द्वादश महाजनों का नाम गिनाए, तो उनमें से प्रह्लाद का नाम आया, और प्रभुपाद कहते हैं कि इन महाजनों में से श्रेष्ठ महाजन प्रह्लाद है। क्यों क्यों ये श्रेष्ठ है? अन्य तो और भी बहुत सारे बड़े बड़े भक्त है, शिव है और नारद है, कुमार है, कपिल है, मनु है, ये है, तो प्रह्लाद जी एक भगवान का शुद्ध भक्त थे। तो अन्य भी है जो देवताओं ने भगवान का निर्देश में अपना अपना डिपार्टमेंट का परिचालना करते हैं, ये भी भगवान का भक्त है, लेकिन प्रह्लाद जैसे ऐसे ही नहीं, क्योंकि प्रह्लाद आपने सुने आ रहे हैं कि किस प्रकार हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रताड़ित होकर विष्णु भक्ति को त्यागते ही नहीं, तो उनका जो अटूट विश्वास भगवान विष्णु के ऊपर, तो उससे इंच मात्र वो हिलते नहीं, अपना जो स्थान जो स्थिति है वो स्थिति से वो हटते ही नहीं। और इतना ही नहीं, तो जब उन्होंने छोटे से 5 साल के बालक थे, तो उस समय में भी अपना सहपाठी जो दैत्य बालक है उनको भी बहुत सारे शिक्षा देते थे, जो जीवों के लिए परम औषध है, अमोघ औषध है। ऐसे तो हमारे परिवार में जब हम जन्म लेते हैं तो पिता माता तो थोड़ा बड़े हो जाने के पश्चात तो हम जब भक्ति करते हैं तो पिता माता का मन में खटकता है, अगर ये ऐसे भक्ति करेगा तो संसार छोड़कर चला जाएगा। हमारे सामान्य लोगों का बात क्या कहा जाए, तो महाप्रभु चैतन्य जिनके माता पिता, उनका पिताजी जगन्नाथ मिश्र वो बहुत बड़े पंडित थे, उपाधिवान पुरुष थे, फिर भी उन्होंने अपना ज्येष्ठ पुत्र विश्वंभर का संन्यास ग्रहण के पश्चात अपने पुत्र निमाई का पाठशाला में जाना बंद कर दिया। तो माता शची ने शची माता ने इस प्रकार कहे कि एक तो चला गया, तो जब पढ़ाई लिखाई करेगा संसार का बारे में उनको जानकारी होगा, तो फिर संसार से विरक्त होकर फिर संन्यास ले जाएगा, फिर एकमात्र पुत्र भी हमारे ये है, अगर ये चले जाए तो नीना ही हमारे सब कुछ है, तो इसलिए उनका पाठशाला में जाने का बंद कर दिया। तो सामान्य जन तो स्वाभाविक है, क्योंकि बहिर्मुख होने के कारण, तो विष्णु विमुख होने के कारण, तो सभी चाहते हैं कि अपने इंद्रियों के प्रीति के लिए संसार में कर्म करें, क्योंकि उन्होंने भगवान का विष्णु का बारे में नहीं जानते। यही शिक्षा प्रह्लाद महाराज ने अपना दैत्य बालकों को देते थे। मत्तिर्न कृष्णे स्वतोवा परतो मृत्योभि पद्धत गृहवतानाम अदांत गोभि विशतम तमेश्वरम पुनः पुनः सर्वित चरवाणानाम। ऐसे ही कहते थे कि ये लोग जो बहिर्विषय में जिनका मति है तो ये कृष्ण का भक्ति नहीं करते, कृष्ण को नहीं जानते। मत्तिर्न कृष्ण स्वतोवा परतो, अपना स्वाध्याय से अपना साधन से वो नहीं जानते, अथवा दूसरे के द्वारा गुरु और साधु शास्त्रों के द्वारा उपदिष्ट होने पर भी वो कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं। नते विदुहे स्वार्थ गतिम ही विष्णु, जो कि सभी जीवों का स्वार्थ गति चरम गति है भगवान विष्णु, उस गति को नहीं जानते थे, क्योंकि उनका मन सर्वदा विषयासक्त था, तो विषय और परमार्थ दोनों विपरीत दिशाओं में जाने वाला है। जो विषयासक्त होंगे वो कभी भगवान विष्णु का स्मरण नहीं कर सकते, भगवान का अर्चन नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रह्लाद इस प्रकार उन्होंने छोटे छोटे बालकों को अपना कक्षा में आचार्य आने से पहले उनको शिक्षा देते थे। कौमारम आचरित, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान है, ये जो भागवत धर्म इससे इसको कुमार अवस्था बाल्यपन से ही शिक्षा करना चाहिए, क्योंकि हमारे मनुष्य जन्म ये कोई निश्चय नहीं कब तक टिकेगा। यद्यपि शास्त्र में कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य का आयु 100 साल, फिर भी इसका कोई निश्चय नहीं है, किसी भी समय में यह शरीर का पतन हो सकता है। तो प्रह्लाद ये सारे बात जानते थे, क्योंकि शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान का जो जो इच्छा है तो भक्तों को अवश्य ही मालूम हो जाता है, ज्ञात हो जाता है, क्योंकि भगवान का भक्ति का प्रभाव ये है कि भगवान सारे शक्ति अपना भक्त में संचारित कर देते हैं, जो अनन्य भाव से उनका उनका भजन करते हैं। तो प्रह्लाद अभी ये कह रहे हैं, नृसिंहदेव कह रहे हैं कि तुमको तो मेरा भक्त है, तुमको तो सदगति होगा ही होगा, लेकिन तुम्हारे जो संग करेंगे वो लोग भी इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। और भी दृष्टांत ये प्रह्लाद का इस ये में ये जैसे कहे कि तुम जो तुम्हारे आदर्श का अनुसरण करेंगे वो स्वभावतः शुद्ध भक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये जो भक्त होते हैं वो आदर्शवान ही होते हैं, शास्त्र का निर्देश अनुसार ही चलते हैं, कभी उन्होंने बहिर्मुख अथवा शास्त्र निषिद्ध कर्म को पालन नहीं करते हैं। इसलिए जो इन शुद्ध भक्तों का शरण में आते हैं और उनका संग लाभ करते हैं तो उनका भी सदगति हो जाती है। जैसे श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में कहा गया, सुत गोस्वामी उपस्थित सौनकादि मुनियों का समूह में कह रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम भगवत कथा है तो इसका श्रवण का जो फल है वो अमित है, और ये क्या नहीं करता है उसके बारे में बताते हैं कि किरात हुनांद पुलिंद पुलकशा आदिर कंख जवना खसादय ये अन्य च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति ते अपि प्रभावष्ण में नमः। तो इस प्रकार कहते हैं कि ऊपर लाइन में किरात हुनांद पुलिंद पुलकशा आदिर कंख और यवन, ये सब नीच कुल के होते हैं, नीच कुल में जन्म होते हैं। नीच कुल इसलिए कि उनका जो परम कल्याण का जो विषय है उनको नहीं जानते, तो केवल आहार निद्रा और भय मैथुन इनमें ही उनका जीवन बीतता है, तो इसलिए उनको इस प्रकार ये निम्न योनि बा निम्न जाति में गिना गया। तो कहते हैं कि इन लोग ये इतने अधम होते हैं तो इनका उद्धार बहुत कष्ट साध्य है, फिर भी कहते हैं कि अगर ये लोग भगवान का भक्तों का अगर आश्रय ग्रहण करें तो ये भी शुद्धता को प्राप्त होते हैं और वो अपना स्थिति से ऊपर उठते हैं। तो जो लोग भगवान का शरण में आते हैं उनका बात क्या कहा जाए। तो इस प्रकार क्यों भगवान के जो शुद्ध भक्त है तो उनका संगति लाभ से इस प्रकार परिवर्तन क्यों होता है। ये कहते हैं कि भगवान जो होते हैं तो वो अत्यंत पवित्र वस्तु है और जो भगवान का भक्त होते हैं वो हमेशा अपना हृदय में वो भगवान को धारण करते हैं। भगवत विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वंती तीर्थाने स्वांतस्तेन गदाभृता। ये जो लोग होते हैं ये संत जन होते हैं ये भगवान गदाभृता गदाम विभर्ती तो गदाभृत तो ये हमेशा अपना हृदय में वो गदाधारी भगवान विष्णु को धारण करते हैं। तो जो भगवान विष्णु को और कृष्ण को हृदय में धारण करेंगे अवश्य ही वो पवित्र होंगे क्योंकि पवित्र का एकमात्र कारण है वो भगवान। वो पवित्रतम वस्तु है और संसार में सभी अपवित्र है और जीव उनका अंश होने के कारण वो भी पवित्र है लेकिन पवित्र को हम नहीं जान पाते हैं क्योंकि अविद्याग्रस्त है। वही अविद्याग्रस्त को मिटाने के लिए विद्या प्राप्त करने के लिए इस प्रकार संतों का व भक्तों का संग करने से ही वो प्राप्त होता है। अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं है तब तक अपने को और इस भगवत विज्ञान को समझना कठिन होता है क्योंकि ये विज्ञान ऐसे ही है। इसके लिए आप बाहर बहुत सारे शास्त्र अध्ययन के द्वारा इसको आप नहीं समझ पाएंगे। ये केवल भगवान का कृपा और भक्तों का कृपा के द्वारा ही ये भगवत्ता को ही आप समझ पाएंगे और उससे बढ़कर भी भगवान का भक्त का महिमा है। तो भगवान के भक्तों का महिमा इस प्रकार भी पद्म पुराण में कहा गया। भगवान शंकर अपना पत्नी पार्वती जी से कह रहे हैं कि आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। कहते हैं कि सभी शास्त्रों में वैदिक शास्त्रों में भगवान विष्णु का आराधना को ही श्रेष्ठ बताते हैं किंतु हे देवी ये जो भगवान का भक्त होते हैं विष्णु का भक्त होते हैं तो उनका जो आराधना है वो उनसे भी श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान का भक्त क्यों इतना कल्याणप्रद होते हैं तो इतना शुद्ध होते हैं कि जिनका दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने गाया है गंगार परश हले पश्चात पावन दर्शन पवित्र कर ए तो मार्गुण। ये स्वाभाविक शुद्ध भक्त का लक्षण स्वाभाविक ये होता है कि ये चुंबक के समान होता है। जैसे चुंबक लोहे को आकर्षण करता है और वही आकर्षित लोहा ये चुंबक के द्वारा शक्ति प्राप्त होकर अन्य लोहा को भी वो लोहा आकर्षण करता है। उसी प्रकार भगवान का जो भक्त है तो वो भगवान का भजन करने के कारण उस स्वतः ही व्यक्तियों को जनसमूहों को आकृष्ट करते हैं और ये भगवान का भक्त का जो आश्रय लेते हैं वो भी ऐसे ही। फिर कहते हैं कि हमें जानते हैं कि गंगा कितना पवित्र है और ये भगवान का चरण कमल से मिश्रित होने के कारण उसको पाप मोचन कहा जाता है। मला निर्मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने प्रतिदिन अगर हमें गंगा जी में स्नान करें तो हमारे हृदय का मल नाश हो जाता है और साथ साथ बहिर्मल भी नाश हो जाता है। किंतु ये कहते हैं दर्शन पवित्र केवल हमें स्नान जल का अंग स्पर्श से तो वो पवित्र करता है लेकिन दूर से ही अगर संत वैष्णव का दर्शन होता है वो दर्शन के द्वारा व्यक्ति पवित्र हो जाता है। दर्शन पवित्र कर ए तुम्हार गुण। तो ये एक दो उदाहरण नहीं है, श्रीमद् भागवतम सारे, और केवल सारे श्रीमद् भागवतम नहीं, समस्त वैदिक शास्त्र यही कहते हैं कि भगवान पवित्र वस्तु है और उनका भक्त भी तद अधिक, क्योंकि भगवान का तो बहुत सारा मामला है, तो कितने लोगों को वो कितना लोगों का वो क्या समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन भक्त हमेशा भगवान का चिंता में, कैसे मेरे प्रभु का प्रसन्नता हो, तो उनके प्रत्यर्थ वो काम करते हैं। तो इसलिए जब भगवान के लिए ही भक्त इतना चेष्टित है, तो भगवान भी भक्तों को नहीं छोड़ते हैं, वो स्वयं घोषणा करते हैं, उद्घोषणा कर कहते हैं कि जो साधु है ये मेरे हृदय है, साधव हृदय मनम, साधु नाम हृदय त्वम, तो कहते हैं कि जो साधु लोग उनका जो हृदय है ये मेरे निवास स्थान है, और संतजन का निवास स्थान मेरा हृदय, मैं हूं। स्वाभाविक ही भगवान जगत का ही आश्रय है, तो स्वाभाविक हो गए, लेकिन भक्तों का जो भाव है तो सामान्य जनों से वो विलक्षण है उसमें, क्यों ना, सामान्य जन तो जब अवसर मिलता है अपना परिवार अपना संसार भरण पोषण के पश्चात जब अवसर मिलता है तो भगवान का भजन करने के लिए बैठते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं शुद्ध भक्त, उनका संसार के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं कि वो संसार को अनादर करते हैं, अन्य प्राणियों को अनादर करते हैं, ये भी नहीं है, तो उनको अन्य प्राणियों को यथा योग्य सम्मान करते हैं, इतना नहीं सम्मान केवल नहीं है, उनका कल्याण के लिए भी बहुत चेष्टा करते हैं, लेकिन हम इतने हतभाग्य उन संतों का शरण में हमें नहीं आ पाते हैं, इसका कारण है हमारे अंदर में जो भोग का कामना वासना है, ये प्रतिरोध करता है व्यक्ति का अंदर, जो अनादि काल से जो वासना पड़ी हुई है, वो वासना के कारण व्यक्ति वही वासना प्रभाव से ही प्रतीत होकर प्रभावित हो जाता है, लेकिन वो भगवान को नहीं समझ पाता है। जब किसी दिन किसी समय ऐसी प्रकार संतों का व भक्तों का अहेतु की कृपा उनके ऊपर हो जाए, तो फिर उनका मुक्ति का द्वार उन्मुक्त हो जाएगा। तो भक्तों का स्थिति इसी प्रकार, तो शास्त्र में कितने कहा गया, सारे शास्त्र तो वही वखान करते हैं, और क्या है माने परोक्ष में प्रत्यक्ष में किसी भी प्रकार से, तो समस्त जनसमूह को केवल उनका शरण में उनके पास आने के लिए ही ये समस्त वैदिक शास्त्रों का ही संकलन है, और जो भगवान का शरण में आ जाते हैं तो उनका सौभाग्य है, और जो इतने सत्संग प्राप्त होने पर भी जो विषयाशक्त रहते हैं तो उनका दुर्भाग्य है। इसलिए भगवान का भक्त भगवान का हृदय को जानते हैं, और जैसे भगवान अंतर्यामी है वो तो जानते ही भक्त का हृदय को, लेकिन भगवान का जो भक्त है तो वो भी भगवान का इच्छा को वो भी भल रूपे अच्छा रूपे अच्छी तरह से वो जानते हैं। तो इसका दृष्टांत, तो जब महाप्रभु चैतन्य ने तो जगन्नाथपुर में रहा करते थे, तो रथ यात्रा समय का बात ये है, तो जब भगवान रथ यात्रा हो रहा था तो उस समय में तो जगन्नाथ जी का सामने महाप्रभु उद्दंड नृत्य करते थे, और नृत्य के द्वारा कभी भावाविष्ट होकर गिर पड़ते थे, अन्य भक्तों ने उनको उठाते थे, तो उस समय में उन्होंने एक श्लोक गाया करते थे, जो श्लोक इस प्रकार है कि चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन है, क्या है, यह कौमार हर साहेब वर स कौमारहर सवै वर तायव चैत्र क्षपा ते चौन्मिलिता मालती श्रुभय प्रौढ़ कदम्बा नीला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोधसी बेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। तो ये एक एक उत्कलीय कवि का काव्य का एक श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, तो उत्कल में एक कवि हुए जगन्नाथ मिश्र है, तो उन वो कवि थे, तो उनका काव्य ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। वो साहित्य दर्पण में इस श्लोक का उल्लेख करते हैं, क्योंकि वो छंद शास्त्र होता है, छंद के लिए बहुत प्रकार बहुत प्रकार श्लोक का अलग अलग सब मीटर होता है, जो मात्रा होता है, तो उस श्लोक में तो वो कवि ने इस प्रकार वर्णन किया कि प्रेमिका और प्रेमिकों का, प्रेमिका और प्रेमिका का ये जो संबंध है, एक बार वो रेवा नदी कुल में एक बेतस बेत का तरु था, और वहां आसपास में बहुत सारे कदम्ब नीला चंपक ये सब तरु वृक्ष थे, और उसका नीचे बैठकर वो प्रेमिका और प्रेम और प्रेमिक ये अपना प्राणय लीला में मग्न थे, और ये उनका कुमार समय का कौमार अवस्था था, उस समय का बात है। तो समय क्रम में वो दोनों का किसी कारणवशत विच्छेद हो जाता है, फिर दीर्घ काल अनंतर फिर पुनर्मिलन होता है। जब बहुत वर्षों के बाद जब मिलन होता है, तो उस भाव को उन्होंने यादगार करते हुए तो मन में हर्षित होते हैं, पुलकित होते हैं, लेकिन उस समय में जो भाव था वो दोनों का, जो कुमार और कुमारी उनका जो भाव था, वो भाव अभी नहीं है, क्योंकि अभी दोनों अलग अलग विषय पर उन्होंने मन ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए उस समय का एक यादगार करते हुए वो इस प्रकार कहते हैं कि यह कौमार हर सहवर। तो इस प्रकार जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का सम्मुख नृत्य करते थे, रूप गोस्वामी वहां उपस्थित थे, तो इस श्लोक को उन्होंने उच्चारण करते थे। तो इसका अर्थ महाप्रभु उस प्रेमिक प्रेमिका का इस वृतांत को, तो महाप्रभु का साथ उनका क्या संबंध है, कहते हैं कि नहीं ये तो उपलक्षण है, तो भौतिक दृष्टांत देकर कवि ने कहा, लेकिन महाप्रभु उस दृष्टांत को किस प्रकार लिए, जब उन्होंने ब्रज में थे, तो महाप्रभु जब राधा रानी का रूप में थे और भगवान ब्रजेंद्र नंदन का रूप में थे, दोनों ही अभी मिलित विग्रह है, तो उस प्रकार जो हमारे राधा श्रीमती राधा रानी एवं कृष्ण का जो कैशोर अवस्था में निकुंज में जो प्राणय लीला कर रहे थे, जो अप्राकृतिक प्रकृत लीला कर रहे थे, उस लीला को अभी उन्होंने स्मरण कर रहे हैं, किंतु यहां पर भगवान श्री कृष्ण बा जगन्नाथ जी का सम्मुख खड़े होकर नृत्य करने पर भी उस प्रकार जो भाव था ब्रज में, तो राधारणी एवं कृष्ण का मिलन में जो भाव था, वो भाव अभी प्रकट नहीं हो रहा है। क्यों ना, जगन्नाथ जी अभी ऐश्वर्य भाव में है, तो वो तो श्रृंगार रस का बात है, तो उस भावों को इस प्रकार प्रकट कर रहे थे महाप्रभु इस श्लोक के द्वारा, लेकिन इस श्लोकों को सामान्य जन वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनका जो पार्षद रूप गोस्वामी उन्होंने उसको समझ गए और उन्होंने एक ताड़पत्र में उस श्लोक का अर्थ को लेकर अपना जो झोपड़ी है तो वहां रख दिए और स्नान करने के लिए गए। तो महाप्रभु पश्चात रथ यात्रा का अनंतर पश्चात जब महाप्रभु रूप गोस्वामी से मिलने गए, तो देखे कि दरवाजे का सामने वहां ऊपर कुछ एक ताड़पत्र में लिखा हुआ है, तो उसको पढ़कर बहुत आश्चर्य हुए कि इस प्रकार भाव को, मेरे इस प्रकार भाव को इसने जाना कैसे। तो जब उन्होंने स्नान करके वापस आए तो उनको मैंने इतना प्रेमाविष्ट हो गए थे तो उनको दो थापड़ लगा दिए, तुमने कैसे मेरे भाव को समझा और लेखा कैसे। तो उन्होंने बताते हैं, प्रभु ये हमारा कर्तृत्व नहीं है, जिसका ऊपर आपका ही कृपा होती है वही व्यक्ति ही इसको लिख सकता है। तो आप ही मेरे द्वारा, मैं ही, मेरा शरीर ही लेखनी है, तो आपने इस शरीर के द्वारा इसको लिखवाए, अन्यथा किसी का सामर्थ्य नहीं भगवान का इच्छा को समझने के लिए। लेकिन भक्त भगवान का इच्छा को समझने पर भी अपना दैनिक दैन्य एवं इस प्रकार भाव को पोषण करते हुए वो हमेशा भगवान का सामने नतमस्तक होते थे। तो इस प्रकार जो भक्त होते हैं भगवान का इच्छा को भी वो जान लेते हैं। तभी तो जब हमें कैसे जानेंगे भगवान क्या चाहते हैं, हमें उनका सेवा करते हैं तो सेवारत रहते हैं तो वो क्या चाहते हैं हम कैसे हम समझेंगे। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया कि देव भूत्वा देवान यजेत, जब हम भगवान का भक्ति करते हैं वो भक्ति का महिमा पराकाष्ठा ऐसे ही है, तो वो भक्ति का प्रभाव से वो भक्त वो भगवान का महिमा को समझ जाते हैं। और भगवान भी स्वयं कहते हैं कि केवल एकमात्र उपाय है उनको जानने के लिए, क्या है ना, भक्त्या माम अभिजान आती यावान यश्चास्मि तत्त्वतः। तो एकमात्र उपाय है भक्ति, और कोई साधन नहीं है भगवान को जानने के लिए, क्योंकि भगवान का अचिंत्य शक्ति तो उनको जानना सामान्य मनुष्य का पक्ष में ये अत्यंत दुस्तर है। इसलिए उनका कृपा केवल उनका भक्ति का माध्यम से ही होता है। जो उनका अनन्य भक्ति याजन करते हैं व अनन्य भक्ति करते हैं तो वही ही उनका भाव को समझ पाते हैं। तो और एक बात, जब महाप्रभु ने नृत्य करते थे एवं रूप गोस्वामी उनका साथ रहा करते थे, तो इस प्रकार भाव को देखकर महाप्रभु रूप गोस्वामी का अंदर भी इस प्रकार भाव सृष्टि होता था। लेकिन जैसे महाप्रभु का अष्ट सात्विक भाव ऐसे ही नहीं, तो पूर्ण रूप में आठ गुण तो नहीं है लेकिन कुछ होता था। और उन्होंने एक श्लोक भी लिखे, जो भगवान का नाम लेते थे रूप गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी को स्वानुभव अनुभव होता था, उस नाम का कीर्तन का प्रभाव उनको अंदर में ही अनुभव होता था। तो उन्होंने और एक सुंदर श्लोक जो कि चैतन्य चरितमृत में वर्णन किया गया, तो नाम का वैशिष्ट्य कैसे ही है, और वो अगर भगवत भक्तों का मुख से निर्गत हो तो वो और रसास्वाद हो जाता है। तो उन्होंने एक श्लोक लिखे थे कि तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे कर्ण कूड कड़म्बिने घटयते कर्णाम्बुदे व्यस्पृहन चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता कियद्भिर अमृते ही कृष्णेति वर्णद्वयम्। तो इस श्लोक को महाप्रभु बहुत आदर किए, कहले रूप तुम्हें वास्तव नाम को आस्वादन कर रहे हो। तो उन्होंने कह रहे हैं रूप गोस्वामी, तो भगवान का नाम जब लेते थे तो वो अपना कल्पना कर रहे हैं कि प्रभु क्यों एक हमको मुख दिए, एक जीवा क्यों दिए, तुंडे तांडवी निरतिम वितनुते तुंडा बड़ी लब्ध है। तो जब मैं कृष्ण का नाम ले रहा हूं तो उस समय में वो जीवा तांडव नृत्य करने लगता है। और इतना ही नहीं है, वो कहते हैं कि मेरा सैकड़ मेरा जीवा हो जाए कि एक साथ में भगवान का नाम लिया करूं और उस नाम का प्रभाव को मैं आस्वादन करूं। इतना नहीं, कहते हैं कि जो दो करण भगवान हमको दिए तो इसे करोड़ों करणों का उन्होंने इच्छा प्रकट करते हैं। कहते हैं कि कर्ण क्रोड़ कर्ण मिने घटे थे कर्णाम्बुदेभ्य अर्बुद कर्ण का वो भाव पोषण करें कि मेरा करोड़ अर्बुद कर्ण हो जाए, तो इन कृष्ण का जो नाम वो उच्चारण में कर रहा हूं, अनेक जीवा के द्वारा उस करोड़ों कर्ण के द्वारा उनका श्रवण हो। फिर कहते हैं जब मैं इस प्रकार उच्चारण करता हूं ये कृष्ण का नाम, तो चेत प्रांगण संगनी विजयते सर्व इंद्रियाणाम कृतिम, सारे इंद्रियों का जो हमारे पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय और साथ में मन, ये एकादश इंद्रियां जो हमारे बहिर्मुख होते हैं तो उनका जो प्रयत्न है वो प्रयत्न को रोक देते हैं। चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, सर्वे इंद्रियों का जो कृति प्रयत्न को वो रोक देते हैं तो वो निश्चेष्ट हो जाते हैं। जैसे मृग वन में चरते समय अगर व्याध का जो वंशी स्वन को सुनता है तो अपना मुख में वो घास को दबाकर वहीं खड़े रहता है और उस वंशी स्वन को निरवच्छिन्न भाव से वो श्रवण करता है और वही स्तंभ हो जाता है और व्याध आकर उसको पकड़ कर ले जाता है। तो उसी प्रकार ये कहते हैं कि जब भगवान का इस प्रकार नाम मैं लेता हूं तो चेत हृदय में जो इंद्रियों के द्वारा जो कृति है यत्न है तो उनका ठप हो जाता है, प्रयत्न उनका चेष्टा सब ठप हो जाता है। कहते हैं नो जाने जनिता कियत भी अमृत ही, फिर अपने आश्चर्यचकित होकर बोल रहे हैं कि मुझको पता नहीं है कैसे ये भगवान का ये जो कृष्ण ये दो वर्ण है तो उसमें क्या अमृत भगवान ने रख दिया। कृष्ण इति वर्ण द्वयम्, तो इस प्रकार जब हम भगवान का शुद्ध भक्ति याजन करते हैं तभी उस रस का ही आस्वादन होता है और आपका मात्रा जितना ही तीव्र है उतना ही तीव्र मात्रा से ही उसका आस्वादन होता है। अगर हमारे विषय वासना और साथ साथ भगवत भजन एक साथ में हो तो उसी प्रकार जैसे हम संसार में अभी है उसी प्रकार रहते हैं। कभी सत्संग मिल गया तो भगवान का नाम कीर्तन श्रवण करते हैं और कभी विषय का संग मिल गया तो विषय का भी भोग करते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होता है क्योंकि दोनों दोनों को बराबर कर देते हैं। कभी विषय संग भी बहुत कष्टदायक होता है, ये उसको भी जला देता है, लेकिन ये सुकृति के बल से ही वो भगवान का भक्त का अगर संग लाभ हो तो भगवान का भक्त इसी प्रकार परिस्थिति में रहता है। वो अत्यंत शुद्ध होने के कारण वो पारिपार्श्विक जो भी व्यक्ति इनका सानिध्य में आते हैं उनको भी पवित्र बना देते हैं। ये कहते हैं कि वो जो किरात हुनांद्र ये लोग अत्यंत नीच कुल के होने पर भी जब भगवान का भक्तों का भक्त का संग लाभ प्राप्त होता है उनको तो वो भी शुद्धता को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार प्रहलाद जी को जो निश्चय भगवान ने जो वरदान देते हैं तो वो अपने के लिए कुछ भी नहीं मांगते हैं कि भौतिक कामनाओं का विषय में कुछ भी उच्चारण नहीं करते हैं और उनका ऐसी भाव है कि वो निर्वैर होते हैं। अपना पिता जिसके कारण उनको इतना दंड भोग करना पड़ा तो वो अपना पिताजी के लिए भी वो वर मांगते हैं कि अनजान में तो उन्होंने अविद्या के कारण वो आपको समझ नहीं पाए तो आप अगर मुझे मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मैं इस प्रकार याचना करता हूं कि मेरे पिताजी को आप सद्गति दीजिए। तो उन्होंने भी बताया प्रहलाद जी को, क्योंकि हिरण्यकश्यप भगवान के हस्त का उनका गोद में बैठा है तो इससे और सौभाग्य किसका हो सकता है। तो यद्यपि बाह्य दृष्टि से हम लोग हिरण्यकश्यप बहुत मैंने खराब दृष्टि से देखते हैं लेकिन वास्तव में वो महान थे। अब जानते हैं वो तो भगवान का पार्षद ही थे लेकिन जिस भाव से उन्होंने इस प्रकार अभिनय किए वो अभिनय केवल आसुर भाव के द्वारा नहीं है, वो आसुर प्रभाव देखिए उसका जो पीछे रहस्य छिपा हुआ है, ये भक्तों का महिमा को गान करने के लिए भक्तों का महिमा को बढ़ाने के लिए हिरण्यकश्यप इस प्रकार राक्षस का अभिनय कर रहे हैं। और साथ ही साथ भक्तों का नहीं भगवान का महत्ता को भी बढ़ाते हैं। भक्तों और भगवान में जो संबंध है उसका जो पराकाष्ठा है उसको प्रदर्शन करने के लिए इस प्रकार अभिनय करते हैं। इसलिए जो हिरण्यकश्यप ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान का पार्षद होते हुए ये राक्षस योनि में जाने पर भी तो उसी योनि में भी वो भगवान का भजन करते थे, क्योंकि इतना व्याकुल थे कि भगवान के पास वापस जाने के लिए तो उन्होंने भगवान से यही बार मांगा कि हाँ तीन जन्मों में हमको असुर योनि में डाल दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जितना भी जल्दी हो सके तो हम आपके पास वापस आना चाहते हैं। इस प्रकार प्रह्लाद जी को बर याचन करते हैं। आगे पीछे बहुत सारे इस अध्याय का ऐसे ही है, क्योंकि भक्त शिरोमणि प्रह्लाद अपना जो प्रभु का जो आशीर्वाद व कृपा को वो स्वीकार करते हैं और जनता के कल्याण के लिए भी वो सारे वर मांगते हैं। तो इस प्रकार आगे भी और सुनेंगे, समय हो गया तो इनसे विराम लेते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।